ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिनिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम् रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रथितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनतन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप सब पुण्यशाली लोग यहाँ आए हैं, भक्तिमान लोग यहाँ आए हैं। कुछ विशेष सुनने के लिए, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, क्रिकेट के बारे में नहीं, परमार्थ के बारे में आप यहाँ आए हैं। सही है, परम अर्थ, जिससे आपका परम कल्याण होगा। तो आपका परम कल्याण कैसे होगा, इस विषय के बारे में पृथक पृथक विचार या मत है। और हम कहना चाहते हैं कि आपका परम कल्याण होगा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से। आप सब मालूम है कि वो हमारा विचार है, और इसके बारे में आप सब यहाँ आए हैं, इस विषय के बारे में श्रवण करने के लिए। तो हम आपको और समस्त विश्ववासियों को कहना चाहते हैं कि कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ मार्ग है सब प्राणियों के लिए। तो ऐसे पृथक पृथक लोग का पृथक पृथक विचार है, परंतु हम जो कहते हैं वो वाणी शास्त्र के अनुसार है। भगवान कृष्ण का स्वयं वचन जो भगवद गीता में है उसके अनुसार है, और हमारी वाणी नहीं है। हमारी वाणी हमारे या किसी की मनगढ़ कल्पित अहंकार से उद्भूत राय नहीं है, ये सब भगवान का उपदेश है। और इसलिए चूंकि प्रमाणिक, हम सब जो बोलते हैं वो प्रमाणिक है, परम प्रमाण है वेद शास्त्र। और वेद शास्त्र का परम उपदेश है कि कृष्ण भगवान है और इनकी भक्ति करना सब जीव का परम धर्म है। तो ये हमारी वाणी नहीं है, भगवान की स्वयं की वाणी है। तो शास्त्र, हम शास्त्र की बात बोलते हैं। तो शास्त्र में वो सब उपदेश जो है वो सब सत्य उपदेश है, फिर भी शास्त्र में पृथक पृथक पंथ का वर्णन है, दान देना और तीर्थ यात्रा करना और विद्या प्रदान करना और इस प्रकार जन कल्याण करना कर्म खंड में है, और ज्ञान मार्ग भी है, वेद शास्त्र का अध्ययन करना इस उद्देश्य से अपना को आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करने के लिए, भगवान की ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, इसको मुक्ति बोलते हैं, निर्विशेष मोक्ष। तो ऐसे शास्त्र में पृथक पृथक पंथ है और उपपंथ भी है, उप उपपंथ भी है, और इसलिए कुछ लोग वैदिक शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य नहीं समझ के विचार करते हैं कि जतो मत ततो पद, जितने भी मत हो इतना पद भी है और सब एक ही है और सब पद की लक्ष्य एक ही है, अर्थात जो भी आप करते हो उससे आप परम सिद्धि मिलेगी। परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण जो सबसे प्रमाणिक शास्त्र है जिसमें सब वैदिक पंथों का विचार विमर्श होते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, उसमें चरम सिद्धांत है सर्वधामान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण कहते हैं कि और सभी प्रकार का धर्म अथवा धर्म का नाम में सब कुछ जो चलते है वो सब परित्याग करके इस धर्म पालन करो, मेरे अभय चरणों में पूर्ण शरण ले लो, इससे तुम मेरे द्वारा तुम्हारा सब पूर्व कृत कर्मों के फलों से पूर्ण मुक्त हो जाएगा, मा सोचो चिंता मत करो। तो ये भगवद गीता उपदेश है, और चैतन्य महाप्रभु का उपदेश एक ही उपदेश है, परंतु चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण स्वयं, उनका उपदेश है कि कृष्ण के चरण में शरण लेना और शरण लेने के पश्चात और भी है, वो क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। सामान्यतः शास्त्र में चतुर्वर्ग अनुमोदित है, ज्यादा आवाज आता है, वो आवाज आता है, चतुर्वर्ग बोलते हैं, अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो सामान्यतः वैदिक पंथ अवलंबीगण ये चारों वर्गों को पालन करने को वैदिक पंथ मानते, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म क्या है? धर्म आधुनिक युग में हिंदी गुजराती ये सब भाषाओं में धर्म शब्द की परिभाषा तो संस्कृत में और संस्कृत वैदिक संस्कृति में वो धर्म शब्द की परिभाषा जो थी आधुनिक भारतीय भाषाओं में वो परिणत हो गया। आजकल हम कहते हैं क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, और ऐसे धर्म का नाम है हम अलग अलग पंथ का विचार करते हैं। परंतु प्राचीन वैदिक संस्कृति में कि एक धर्म दूसरे धर्म से अलग हो सकते वो धारणा नहीं थी। धर्म शब्द का आदि अर्थ है जिसका पालन करने से एक व्यक्ति का परम कल्याण होते हैं और जिसका पालन करने चाहिए। हर एक सभ्य व्यक्ति धार्मिक होने चाहिए। धार्मिक का मतलब पूर्व काल में धार्मिक होना का अर्थ नहीं था मस्जिद जाना, मंदिर जाना, तिलक लगाना, वो सब था। परंतु धार्मिक होना का मतलब था कि पूरे जीवन में प्रत्येक क्षण में जीवन व्यतीत करना धर्म के अनुसार, प्रत्येक वचन, प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक कर्म, सब कुछ धर्म के अनुसार होने चाहिए। और धर्म क्या है? धर्म वो नियम है, वो रीति है जिसका पालन करने से वो पालन करने वाला का कल्याण होते है और पूरे जगत का कल्याण होता है। और अधर्म या धर्म के विरुद्ध उस प्रकार कर्म से वो अधार्मिक व्यक्ति का अपकल्याण होते हैं, हानि होते हैं और पूरा जगत का भी अकल्याण होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापन के लिए प्रत्येक युग में आते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठाना चाहता था और दुर्योधन को राज सिंहासन से निकालना चाहते थे, क्योंकि युधिष्ठिर तो परम धार्मिक थे और दुर्योधन भी तो ब्राह्मणों का पालन किया था और प्रजाओं की रक्षा की इत्यादि। परंतु युधिष्ठिर महाराज की पूरी शुद्ध स्पष्ट धर्म की धारणा थी और दुर्योधन की धारणा धर्म के बारे में था कि पालन करते हो अपने स्वार्थ के लिए, परंतु धर्म पालन करना चाहिए स्वार्थ के लिए नहीं। धर्म पालन करना चाहिए केवल धर्म का हेतु से, क्योंकि धर्मां हि साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म है वो रीति जो भगवान स्वयं हमको प्रदान किया है, और इसलिए हमारा कर्तव्य है निसंकोच चिंतन नहीं, विचार विमर्श नहीं करके शास्त्र में जो है वो धार्मिक विधि निषेध सब कुछ वो सब पालन करना, तो वो धर्म है। और ऐसे पृथक पृथक संप्रदाय विभाजित है, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, वो नई धारणा है। धर्म है वो रीति जिससे भगवान और भगवान के प्रतिनिधियां देवगण इस विश्व की परिचालना करते हैं, और हम इस धार्मिक परिचालना में यदि हम अंश ग्रहण करेंगे तो उससे हमारा स्वयं का कल्याण होगा और पूरा विश्व का कल्याण होगा, और यदि हम अधार्मिक हो तो पूरा जगत में वो वातावरण दूषित हो जाते। तो इसलिए एक व्यक्ति जो धार्मिक है, जो कहते हैं वो सब कुछ इस चिंतन से करते हैं कि मैं जो सब कुछ जो करता हूँ वो केवल मेरा स्वार्थ के लिए नहीं है, सजाइव तत्पर होते हैं कि मैं जो करता हूँ तो धर्म के अनुसार शास्त्र विधि के अनुसार करना चाहिए, जिससे धार्मिक विश्व का धार्मिक वातावरण में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ऐसा धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्वर्ग बहुत है। और अर्थ है, आजकल अर्थ का दूसरा शब्द है मनी, पैसा, रुपया, डॉलर, यूरो, रिंगिट इत्यादि। तो वैदिक संस्कृति में भी रुपया है, सोने के मुद्रे, परंतु अर्थ अथवा धन तो केवल सोना चांदी पैसे से मापना नहीं। जिनके पास संपत्ति है, जो भूमिदा है, जिनके पास बहुत गाय है, अनाज है, वो व्यक्ति धनवान है। परंतु धनवान होना धर्म के अनुसार, धनवान होना तो दूसरों को गरीब बनाने नहीं है, दूसरों का शोषण करना नहीं, अपना इज्जत बनाने के लिए नहीं है। धन वैश्यों और क्षत्रियों धन संचय करते हैं, क्षत्रियों विशेषकर, जिससे महान विष्णु यज्ञ बनाना संभव हो, जिससे स्वर्ग के देवताओं संतुष्ट होंगे, वैकुंठ के नाथ श्री विष्णु संतुष्ट होंगे, और इस प्रकार इस धरती पर शांति और धर्म रहेगा, और इस प्रकार मानव जीवन का परम उद्देश्य धार्मिक होना, और वो मानव जीवन का परम उद्देश्य का प्रथम स्तर पर धार्मिक होना वो विचार है, और परम उद्देश्य है कृष्ण भक्तिमान होना। तो जिससे धर्म अच्छी तरह पालित हो सकते, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए अर्थ संचय करना है, दूसरों को शोषण करने से नहीं, और अपना स्वार्थ बनाने के लिए नहीं। अर्थ का संचय होने चाहिए धर्म के लिए। तो सबके पास कुछ धन रखना चाहिए, कम से कम रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होने चाहिए सबके लिए। ब्राह्मणों शूद्र, वैदिक संस्कृति में ब्राह्मणों शूद्रों तो धनी नहीं थे, परंतु उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था भी होने चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वो कम से कम न्यूनतम उतनी से व्यवस्था होने चाहिए। और काम कामना की पूर्ति करना, तो वैदिक संस्कृति व्यवहारिक है। वैदिक संस्कृति में विचार है कि सब लोग तो शुद्ध परम हंस नहीं है, हम इस जो इस संसार में है हम सब मायाबद्ध जीव है, और इसलिए सबके हृदय में बहुत भौतिक कामनाएं हैं। परंतु धार्मिक सभ्यता में वो भौतिक कामनाएं धर्म के अनुसार की पूर्ति का प्रयास करना चाहिए। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्माविरुद्ध हो भूतोस्मि, धर्माविरुद्ध हो कामोस्मि, धर्माविरुद्ध हो कामोस्मि, धर्म सर्वभूतेषु कामोस्मि, कामोस्मि भारताश्रम। तो वो काम जो धर्माविरुद्ध काम उसमें, वो काम की पूर्ति करने का प्रयास जो धर्म का विरुद्ध नहीं है, वो श्री कृष्ण का एक प्रतीक है, या श्री कृष्ण का एक अभिव्यक्ति है। धर्माविरुद्ध हो काम उसमें, तो इस प्रकार धार्मिक संस्कृति पालन करने से लोग तो पाप नहीं करते, पुण्य करते। जैसे सभी प्रकार की भौतिक कामनाएं में सबसे बड़ी है स्त्री पुरुष आकर्षण, तो यदि वो कामना स्त्री पुरुष संबंध करने की कामना की पूर्ति होती है धर्म के अनुसार, तो वो तो विवाह धार्मिक विवाह में से पूर्ण होते हैं। और विवाह का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पुत्र, पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र संतान की उत्पत्ति करना। पुत्रार्थे क्रियते भार्या, मानव संहिता में कहा गया है कि भार्या का पाणी ग्रहण करना है पुत्र का अर्थ, पुत्र संतान की उत्पत्ति करने के लिए, और पुत्र पिंड प्रयोजनम, और पुत्र से पितृगण का पिंडदान होगा। तो ये सब वैज्ञानिक धार्मिक संस्कृति है। और यदि कहे वो मैथुन की इच्छा की पूर्ति करते धार्मिक विवाह के बाहर, वो पाप होते। तो इस प्रकार वैध स्त्री संग होते हैं जो धार्मिक है, उससे पुण्य होते। धर्म के अनुसार पुत्रों की उत्पत्ति करवाना वो पुण्य है, और धर्म के विरुद्ध से संतान उत्पत्ति करना या स्त्री संग करना वो पाप है। तो धर्म अर्थ काम और चतुर्भाग में चतुर्थ है मोक्ष। तो धर्म पालित होते हैं और शास्त्र में ये सब अनुमोदन है कि धर्म पालन करो, उससे पुण्य होते हैं, उससे स्वर्गवास प्राप्त होते हैं, जिसमें स्वर्ग, विशाल स्वर्ग सुख प्राप्त होते हैं। शास्त्र में भी और उपदेश है कि वास्तव में सब सुख जो है जगत में है वो क्षणिक और मायिक है, वास्तविक नहीं है। इस भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम है, और इसलिए बुद्धिमान जन का विचार करना चाहिए कि शास्त्र में धर्म का वर्णन और धर्म का चरम, धर्म का वर्णन का चरम लक्ष्य क्या है। चरम लक्ष्य नहीं है हमको प्रलोभित करना, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जाठराय शयनम, नहीं है। वो कर्मकांड करना, पुण्य कर्म करना, वो सब उपदेश है, विद्याएं है, जिससे लोग श्रद्धा में लेंगे वैदिक नियमों से, और जिससे उनका जीवन अनियमित होने से तो पाप पूर्ण नहीं होगा। वो एक ही उदाहरण है कि बद्ध जीवों में वो स्त्री संग की इच्छा प्रबल होती है, तो यदि वैदिक रीति के अनुसार वो स्त्री संग करने की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो पाप कर्म करना पड़ेगा, और उससे एक व्यक्ति की चेतना तो पूरा दूषित हो जाएगी, और वो व्यक्ति का नरक में पतित होना की आवश्यकता होगा। तो जिससे लोग तो अधिक पतित नहीं होंगे, और जिससे वे सभ्य रहेंगे, मानव समाज शांतिपूर्ण रहेगा, और जिससे लोग की श्रद्धा रहेगी वैदिक नियमों में, इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए, कम से कम इस स्तर पर वैदिक पुण्य कर्म कर्म कांड पालन करने से। परंतु शास्त्र में और भी बताया गया है कि वो स्वर्ग सुख जो प्राप्त होते हैं पुण्य वैदिक पुण्य कर्म पालन करने से, वो स्वर्ग सुख का कोई वास्तविक मतलब नहीं है। वो सुख क्षणिक और मायिक है, और वो सुख के साथ बहुत दुख होते, थोड़ा सा काल्पनिक या तुच्छ मायिक सुख के साथ बहुत 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 दुख और दर्द का अनुभव होता है। तो इसलिए वैदिक शास्त्र का एक और उपदेश, एक और विभाग है ज्ञान मार्ग, जिसमें मोक्ष प्राप्ति अनुमोदित होती है, जिसमें ये उपदेश है कि भौतिक सुख, इंद्रिय सुख, स्वर्ग सुख के लिए प्रयास ना करें, वो सब मायक है, उससे आपका वास्तविक कल्याण नहीं होगा। तो शास्त्र में बहुत उपदेश है, बहुत विधियां है जिससे बद्ध जीवों भौतिक सुख मिल सकते हैं, परंतु शास्त्र का ज्ञान का विभाग, विशेष का उपनिषदों में, कि वो सब उपदेश वैदिक शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य नहीं है, वो वचन है। और वास्तविक वैदिक उपदेश है वो सब दुख के जनक मायिक इंद्रिय सुख के लिए प्रयास ना करें, प्रयास करो वो सब माया से मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त हो जाओ। और इसलिए तपस्या करना है, स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, उपनिषद की वाणी, उपनिषदों की वाणियों का श्रवण मनन निधि ध्यासन करने हैं। तो इस प्रकार चतुर्वर्ग है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्री कृष्ण का वचन भगवद गीता में चरम वचन यही है, सर्वधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो भगवान श्री कृष्ण धर्म का पुनर्संस्थापन करने के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं, क्योंकि साधारण धर्म का पालन के बिना मानव समाज में सभ्यता नहीं हो सकती, शक्यता नहीं है। सभ्यता का मतलब वैदिक शास्त्र का धर्मन पालन करना है, तो जिससे कम से कम सभ्यता होगा, मानवता होगा। भगवान कृष्ण धर्म का संस्थापन करते हैं, और वो धर्म तो साधारण विचार में वो धर्म पालन करने का चरम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो मोक्ष जिसकी प्राप्ति सामान्यतः बहुत दुर्लभ होते हैं, इनके चरणों में शरण लेने से प्राप्त होते बहुत बहुत आसानी से। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवां मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी जन जो बहुत कष्ट ग्रहण करके बहुत जन्मों में ज्ञान मार्ग पर फटिक होते हैं, तो ऐसे ही ज्ञानी जन निर्विशेष वादियों ब्रह्मोपासक, तो बहुत बहुत जन्मों का वो प्रयास करने के पश्चात एक ऐसे ज्ञानी ब्रह्मवादी समझ सकते कि श्री कृष्ण वासुदेव वासुदेव है, वो सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति में जिसमें मैं लीन होना चाहता हूँ, वो ब्रह्म ज्योति के स्रोत है वासुदेव कृष्ण, और इसलिए इनके चरण में शरण लेना चाहिए। तो ज्ञान मार्ग अवलंबन करने के बहुत बहुत पश्चात दुर्लभ है एक ज्ञानी जो स्वीकार करते हैं कि मेरा परम श्रेय होगा श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करना। परंतु यदि एक व्यक्ति बड़ा ज्ञानी हो या ना हो, बड़ा तपस्वी हो या ना हो, बड़ा पुण्यशाली या पापी हो, जो भी अवस्था में हो, यदि श्री कृष्ण का वचन स्वीकार करते हैं माम एकम शरणम व्रज, श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना, तो और सब वैदिक धार्मिक रीति पालन नहीं करके भी श्री कृष्ण की दया से वो व्यक्ति उनका सब पूर्वकृत काम फलों से विमुक्त हो जाते, मोक्ष प्राप्ति मिलती है। तो मोक्ष प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है। सामान्यतः लोग तो धर्म अर्थ और काम पालन के, जो सबसे पुण्यशाली लोग हैं तो धर्म का पालन करते हैं अर्थ और काम प्राप्त करने के लिए, और पुण्यशाली लोग में बहुत कम लोग हैं जो इतना बुद्धिमान है मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब स्तर के ऊपर कोई भी तुरंत जा सकते हैं मेरी कृपा से। यदि किसी भी व्यक्ति जिसी भी हाल में हो स्वीकार करते हैं माम एकम शरणम व्रज, श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेना, तो चैतन्य महाप्रभु का परम प्रदान है। इस कलि युग में कृष्ण प्रेम का प्रचार करना, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। चारी पुरुषार्थ का मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो प्रेम, प्रेम विशेषकर कृष्ण विषयक प्रेम, तो पत्नी के ऊपर प्रेम नहीं, पति के ऊपर प्रेम, देश के ऊपर प्रेम नहीं, किसी बॉलीवुड नायिका के ऊपर प्रेम नहीं, कृष्ण प्रेम। कृष्ण जो भगवान है, जो परम आकर्षक है, जो भगवान है मतलब सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान है और परम मधुर भी है, परम दयाल भी है, इनमें सब दिव्य गुण है, और सबसे बड़ा गुण है कि वे आध्यात्मिक प्रेम की मूर्ति है, वो प्रेम जिसका विषय है कृष्ण, वो परम पुरुषार्थ है। अर्थात सब व्यक्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो चतुर्वर्ग या चार पुरुषार्थ बोलते हैं, सब व्यक्ति के लिए वो चतुर्वर्ग चढ़ के तो केवल कृष्ण प्रेम के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये चार ही पुरुषार्थ का कोई मतलब नहीं है। यदि हम विचार करते तो कितना महान है कृष्ण प्रेम, तो अवश्य ही हम साधारण पुण्य कर्म या मोक्ष प्राप्ति के लिए और ज़्यादा रुचि नहीं रहेगी। हम जरूर कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, और वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने कैसे, वास्तव में तो प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम सबका स्वभाव है। पहले से ही वो कृष्ण प्रेम सब आत्मा के साथ है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कबुनय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदय। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश बहुत सारमर्मक है, तो छोटी छोटी बातें में सब वैदिक शास्त्रों के सब महत्वपूर्ण सिद्धांतों संक्षेप में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो इस छोटे से वचन में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हर एक प्राणी का स्वभाव है कृष्ण प्रेममय, परंतु इस भौतिक संसार में वो कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है वो सुप्त हो गया है, अर्थात तो लुप्त या अप्रकट है। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्त, अभी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर या असंख्य भौतिक आसक्तियां से वो कृष्ण प्रेम जो सबका मूल स्वभाव है वो आच्छादित हो गया है, परंतु वो कृष्ण प्रेम का पुनर्जागरण होते हैं कृष्ण भक्ति के द्वारा। कृष्ण भक्ति में क्या है, श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि कृष्ण के बारे में। तो कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ पथ है, क्योंकि इससे हम जो अभी माया से पूरा प्रभावित है, हम दिशाहीन है तो नहीं जानते हम हमें क्या करना है और किस लिए करना है, तो कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ पथ है, क्योंकि हमको वास्तविक मार्गदर्शन देते शास्त्र के अनुसार, शास्त्र का चरम उद्देश्य के अनुसार। और वो सब तो प्रत्येक प्राणी का परम हित के लिए, इस भक्ति करने से कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है वो कृष्ण प्रेम तो पुनः प्रकट होता है। तो वो कृष्ण प्रेम का वर्णन है श्रीमद् भागवत में और चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु तो चरितार्थ करके प्रदर्शन किया, तो कृष्ण प्रेम आनंद का सागर है, उससे सब पूरा कल्याण होता। यदि एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति करते हैं तो केवल वो व्यक्ति का परम कल्याण नहीं होते, तो सब लोग जो वो व्यक्ति देखते हैं या सब लोग जो स्वयं वो भक्त को देखते हैं, सबका कल्याण होता है, परम कल्याण सबके लिए है कृष्ण भक्ति से। कृष्ण भक्ति से प्रेम की उत्पत्ति होते, भक्ति और प्रेम दोनों शब्द, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम दोनों शब्द तो प्राय एक ही है। कृष्ण भक्ति का परम स्तर है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति में साधना भक्ति है, तो प्रथम स्तर में साधना करने चाहिए। भाव भक्ति है, वो भाव भक्ति है वो स्तर जिसमें वो भाव सच भाव का अनुभव होते है। और प्रेम भक्ति है भक्ति का पक्का स्तर, परिपक्व स्तर। तो ये सब विचार विश्लेषण है भक्ति रसामृत सिंधु में और अनन्य शुद्ध भक्ति ग्रंथों में, और इसके बारे में इस विषय के बारे में कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कुछ दिनों में। आज इस विषय का छोटी सी भूमिका प्रदान करने का प्रयास किया था, और कल से यदि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुमति हो तो इनकी दया से मैं प्रयास करूँगा इस विषय के बारे में और कुछ कहना। हरे कृष्ण। तो अभी अगर एक दो प्रश्न हो किसी के तो पूछिए। लगता है कि सब प्रश्न का उत्तर तो कल परसों भावी सत्रों में आप मिलेंगे। अब क्या क्या कौन सा श्लोक कौन सा श्लोक? हाँ
सच्चिदानंद विग्रह, तो वो सच्चिदानंद विग्रह कैसा होता है?
कैसे होगा सच्चिदानंद विग्रह? कैसे होगा? जब तक हमारी चेतना असत अचित निरानंद अवस्था में है, हमारे लिए समझना सच्चिदानंद विग्रह क्या है हमारे लिए समझना संभव नहीं होगा। मैं पीयते आनिया इति माया, माया है वो प्रयास सब कुछ मापना। जो भौतिक प्रकृति के अतीत है वो सब विषय हमारी बुद्धि के अतीत है। तो सच्चिदानंद का मतलब सत्य, सत्य सनातन पूरा चैतन्य चैतन्यमय चिन्मय और पूरा आनंदमय। और जब तक हम इस अशाश्वत अवस्था में हो, जब तक हमारी बुद्धि भौतिक वस्तुओं से आकर्षित होते, जब तक हम इस तुच्छ इंद्रिय सुख को सुख मानते, तब तक सच्चिदानंद क्या है हमारे समझने की शक्ति नहीं होगी। वो हमें विश्वास करना चाहिए कि सच्चिदानंद अवस्था है, और वो विश्वास से यदि हम कृष्ण भक्ति साधना करेंगे तो धीरे धीरे हम अनुभव करेंगे वो सच्चिदानंद क्या है। फॉर्म फॉर्म रूप सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह का मतलब रूप आकार आकृति।
महाराज पर बोला जाता है कि जो ब्रह्म होते हैं निर्विशेष ब्रह्म होते हैं उसके बियॉन्ड कृष्ण है, कृष्ण है जिनका फॉर्म होता है। तो ये दो
निर्विशेष ब्रह्म है ही, लेकिन वो श्री कृष्ण से आते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम, वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति श्री कृष्ण से आते हैं। जैसे सूर्य मंडल से सूर्य का प्रकाश आता है, तो इस प्रकार वो ब्रह्म ज्योति वो परम ब्रह्म के रूप कृष्ण से सच्चिदानंदमय रूप से आते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते अर्जुन, भगवान कृष्ण को बताए कि परम ब्रह्म आप परम ब्रह्म है, तो ब्रह्म ज्योति है, परम ब्रह्म है कृष्ण। एक और प्रश्न आपका क्या है? मोक्ष, मोक्ष क्या है? मोक्ष है जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना। मोक्ष है वो स्थिति जिसमें हम प्रकृति के नियमों से बाध्य नहीं पुनर्जन्म लेना, वो मोक्ष बोलते हैं। और मोक्ष या मुक्ति शब्द का पूर्ण अर्थ या पूरी परिभाषा है मुक्तिर्हितवान यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। ये सब मायिक रूप चरण हम बार बार हर एक जन्म में अलग अलग रूप मिलते, अभी हम सब मानव का रूप धारण करते, इसके पहले हम क्या कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, कीट कृमि के रूप में, अलग अलग रूप में थे। तो ये सब रूप चढ़ के हमारा मूल आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना वो मुक्ति है। मुक्ति हितवान अन्यथा रूप हितवा अर्थात चढ़ के स्वरूपेण व्यवस्थिति, हमारा मूल आध्यात्मिक स्वरूप में व्यवस्थित होना। हरे कृष्ण। यू कैन जस्ट हिंदी बुक्स के बारे में कहो, और सब रेगुलर आने वाले हैं ना।
हरे कृष्ण। तो जैसे आप सब जानते हैं कि महाराज ये कृष्ण भक्ति का जो मार्ग है हमें हम सबको प्रदर्शित कर रहे हैं अपनी पुस्तकों के द्वारा। तो महाराज ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, यहाँ पर हमारे पास हिंदी तथा